ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सायंकाल के इस समय पर हमारे बीच गुजरात की माँ परमादरणीय राजयोगिनी भारती दीदी पधारे हैं। हम सभी दीदी का एक हाथ की ताली से अभिवादन करेंगे। दीदी जी आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। संक्षिप में परिचय देना चाहूंगी। 1952 से नानी माँ के साथ दीदी जी ज्ञान में चले, मात पिता की पालना लेते हुए बाबा के समय में ही जहाँ सेवा में भेजा दीदी वहाँ सेवा करने गए। अनेक सेवा केंद्र भी आपने स्थापित किए। आप हमारी आरईआरएफ राजू के एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के आप गुजरात की सेवाएं संभाल रहे हैं। साथ ही साथ आदरणीय सरला दीदी के अव्यक्त आरोहण के पश्चात आपने पूरे गुजरात की पालना सेवाएं आपने संभाली। आप गुजरात के डायरेक्टर के रूप में सेवाएं भी दे रहे हैं और हमेशा क्रिएटिविटी, नवीनता, एकता, संगठन को साथ लेते हुए दीदी जी सेवाएं दे रहे हैं और सभी की ज्ञान योग से पालना भी कर रहे हैं। तो ऐसे अनुभवी मूर्त और खास आज विशेष विषय के साथ हम सभी के बीच में पधारे हैं, संस्कारों की रास कैसे करें। मैं दीदी से नम्र निवेदन करती हूँ कि आज इस विषय पर हम सभी को ज्ञान दर्शन कराए और अपने संस्कारों को हम कैसे परिवर्तन करें और एक दूसरे के साथ कैसे रास करें उसके बारे में बताएं। आदरणीय भारती दीदी जी, ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी इस बेहद परिवार के बीच बाप दादा के संग तो हम मिलन मना भी रहे हैं और मनाते ही रहेंगे और विशेष आज जैसे अभी सुना, हम सबको मालूम है ये पूरा विश्व वसुधा सृष्टि एक कुटुंब है, एक परिवार है और हम सबके प्यारे बाप दादा ने इस वैरायटी परिवार के बीच में कैसे आपस में मिलजुल के पारिवारिक भावना से रहना ये बाबा ने सिखाया है। हम जानते हैं ब्रह्मा बाबा के समय से ही वैरायटी, प्रजा कहें या आत्माएं, इस बाबा के घर में शुरू से आ रही है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े, बूढ़े, वृद्ध, युगल, चाहे गांव के, चाहे शहर के, चाहे देश के, चाहे विदेश के, कोई भी भाषा वाले हो, कोई भी ज्ञाति के हो, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, हमारे मीठे बाबा ने शुरू से लेकर के ये सब बातें हम सबको भी सिखाया है कि न देखना है, न उस भान में रहना है। लेकिन इतने बड़े संगठन के बीच में रहते हुए भी कैसे आपस में हम संस्कारों का मिलन मना करके रहें, उसकी विधि बाबा ने हमको वैरायटी बहुत अच्छी अच्छी दी है। सर्वप्रथम तो पहला पाठ ही ये है कि मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, और आत्मा आत्मा एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही परिवार में रहते हैं और एक ही देश के हम सब रहवासी हैं, और एक बाप के बच्चे एक परिवार होने के नाते हम सबकी जो मुख्य बाबा के चाहे परिवार के बीच अंग संग रहने की जो श्रीमत है विधियां है वो भी बाबा ने बहुत सरल बनाई हुई है। लोग कई बार शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना में हम चल रहे थे तो सोचते थे कि ये अलग अलग कुटुंब के अलग अलग परिवार के छोटे बड़े गरीब साहूकार, हमको भी लोग पूछते थे कि आप सब बहने आपस में रहती कैसे हो, आप सब बहनों का कभी कोई मनमुटाव या झगड़ा नहीं होता है। तो हम तो यही कहते थे कि जब से बाबा के घर में आए हैं तो कभी झगड़ा देखा भी नहीं है, सोच भी नहीं सकते हैं। परिवार के बीच वैरायटी होने के कारण, नॉलेज होने के कारण सबको बाबा ने हम सबको सिखाया है कि कैसे, जैसे आज सवेरे की मुरली में भी सुना, फूल बन करके गुणग्राहक बन करके छोटे बड़े बूढ़े चाहे बताए ना कोई भी भाषा वाले, रहन सहन खान पान सब देखो बाबा ने हम सबका एक कर दिया है, और सबको वो बहुत मीठा भी लगता है, और आपस में भी चाहे कोई नए बच्चे हैं चाहे कोई पुराने हैं, कोई बहुत सालों से चल रहे हैं कोई अभी अभी भी आए हैं, कोई यहाँ पहली बार भी आए होंगे अब की बार, लेकिन सब के लिए सिस्टम कहो नियम कहो मर्यादा कहो जो भी कायदे कानून कहें या पारिवारिक भावना से आपस की रहन सहन, वो इतनी सहज सरल और सबको खुश करने वाली सबको संतुष्टता देने वाली है। जहां तक मेरा अनुभव कहता है क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे, आज दिन तक तो कभी सोचा भी नहीं है सुना भी नहीं है। कभी कभी कोई कहते हैं तो थोड़ा आश्चर्य भी लगता है, ये कोई क्वेश्चन है क्या, जबकि हमको बाबा ने इस वैरायटी ड्रामा का हर व्यक्ति के स्वभाव संस्कार का चाहे प्रकृति का भी, चाहे आने वाली नई दुनिया की भी जो रहन सहन है, सबका बाबा ने बहुत अच्छा क्लियर ज्ञान दे दिया है, समझ दे दी है। और ये भी पता है एक ही परिवार के यहाँ भी है और जन्म जन्मांतर परिवार के बीच ही हम सब रहते भी आए हैं, रहना भी है और भी आगे चल करके चलते रहेंगे। जैसे लौकिक में भी अपने परिवार के प्रति क्या होता है, कोई भी कोई के बारे में कुछ थोड़ा भी उसकी कमजोरी की बात या अवगुण की बात छेड़ते हैं तो हम वो सुन नहीं सकते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। हम कहते हैं नहीं नहीं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा फलाना ऐसा नहीं है। क्यों? हम उसको अपना मानते हैं। और हम लोगों को तो बाबा ने यही सिखाया कि जो दूसरे की कमी है वो भी मेरी ही है, उसका अवगुण है वो भी मेरा ही है, जबकि एक परिवार है और अपने हैं। तो ऐसी बातें आज दिन तक तो दिखाई नहीं पड़ी है, और मैं अनुभव से कह सकती हूँ कि दिखाई पड़ भी नहीं सकती है, क्योंकि बाबा ने हमको बहुत अच्छे गुणग्राही बनने की इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि हम पशु पक्षी पेड़ पौधे धरती व्यक्ति, बताया ना, छोटे बड़े सबसे कैसे उनकी विशेषता को जीवन में ग्रहण करना, धारण करना या देखना, चाहे सुनना, वही बातें इतनी अच्छी पक्की टेव बाबा ने डाल दी है। लौकिक में भी जैसे बचपन के जो संस्कार होते हैं ना, वो स्कूल लाइफ में चाहे पियर घर चाहे ससुराल घर जो भी कहो, वो जो होते हैं स्वभाव संस्कार रहन सहन, और हम सबको मालूम भी है आत्मा अविनाशी है, मन बुद्धि संस्कार सहित है, तो जहाँ भी जाएंगे वो वहाँ हम साथ में ही लेकर के चलते हैं। और जब एक दो की पॉजिटिव साइड ही देखने की नेचर जब बना लेते हैं, बन जाते हैं, तो सब हमको अपना ही लगता है, और हम न कोई और की इन बातों में जा भी सकते हैं न जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि बाबा ने जब शुरू में यज्ञ की स्थापना की तो छोटे छोटे बच्चे भी, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, देखो कैसे सब ऐसे भी परिवार में भी साथ में रहते हैं। वहां तो फिर भी अज्ञानतावश थोड़ा कभी कोई के स्वभाव संस्कार का वर्णन भी कर लेंगे, देख भी लेंगे, सुन भी लेंगे, सुना भी लेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव ये कहता है आज दिन तक लाइफ में कभी इन बातों में ध्यान ही नहीं गया है, क्योंकि बाबा ने ऐसा स्वभाव संस्कार बना दिया है कि हरेक से जीवन में कोई न कोई अच्छी बातों को धारण करते हैं। कभी कभी साकार बाबा भी जब मुरली सुनाते थे और मुरली के पश्चात बाबा कई बार कहते थे इसमें युगल कौन बैठे हैं वो उठो, सभा में उठाते थे लास्ट में, और कहते थे दोनों एक दो में कौन आगे जा रहा है, हाँ कौन क्या विशेष पुरुषार्थ कर रहा है। एक तरफ तो बाबा देखते भी थे कि वो मनोवृत्ति लौकिक संबंध की कहाँ तक जा रही है। और साथ साथ बाबा ने ये भी सिखाया कि जब हम अपने ही मानते हैं, परिवार का ही समझते हैं, तो जैसे लौकिक परिवार में कोई एक दो का ऐसी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता है, बल्कि ढकने की कोशिश करते हैं। छुपाने की बात नहीं है, छुपाना तो बाबा कहते हैं पाप कर्म बन जाता है। हमें छोटी छोटी बातों में भी बाबा जैसे पूछते थे आप दो में से कौन आगे जा रहा है, और ये भी कहता था कौन है जो कभी रोता नहीं है वो आकर के टोली बांटे। आप में से भी बहुत यहाँ बैठे हैं ना, युगल भी बैठे हैं, जो कभी रोते ही नहीं है, है कोई ऐसे? वो हाथ उठा कर ऊंचा करो, जो कभी रोते नहीं है। हाँ, दिखाई नहीं पड़ता है, इसका मतलब सब रोते रहते हैं ऐसे, और थोड़ों ने हाथ उठाया है। लेकिन बाबा ये सब देखते थे और सभा में कहते थे वो ही आकर के टोली बांटे, वो ही आकर के कुछ अपना अनुभव सुनावे, क्योंकि अनुभव भी कहता है वो ही कहने के कुछ हकदार होते हैं। जिसके जीवन में खुद में वो धारणा होंगी ना, वो दूसरों को कहेंगे तो उसको बोलना भी नहीं पड़ता है, उसके जीवन की धारणा ही दूसरों को प्रेरणा देती रहती है। हम लोग जब आए तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमारी मम्मा की क्या विशेषता रहती थी। एक बार बाबा ने कोई भी बात का इशारा दिया मम्मा को, वो मम्मा ने अपने लाइफ में कभी फिर दोबारा रिपीट नहीं किया। एक छोटा सा मिसाल देती हूँ कि एक बारी बाबा ने मम्मा को अपने बंगलों में निमंत्रण दिया। बाबा परीक्षाएं बहुत लेता था, ब्रह्मा बाबा छोटी छोटी बातों में थोड़ा सिखलाने के ख्याल से भी, तो निमंत्रण दिया। परंतु जब मम्मा आई तो बाबा ने जैसे इतना बहुत ध्यान नहीं दिया, थोड़ा बेध्यान, इधर उधर देखना बहुत मम्मा की तरफ, तो थोड़ा कोई को भी होता तो है ना, कोई निमंत्रण देवे और आपको कोई आगता स्वागता तो ठीक, परंतु थोड़ा मुस्कुरा करके मुलाकात भी ना करे तो भी क्या फील होता है। तो बाबा ने थोड़ा मम्मा को थोड़ा कभी कभी बताया ना, टेस्ट लेता था, कसौटी परीक्षा लेता था, तो बाबा ने इतना बहुत ध्यान नहीं दिया, थोड़ा मम्मा को भी उस समय, तो शुरू में तो हर एक पुरुषार्थी होते हैं, तो जब देखा कि बाबा मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे बुलाते नहीं हैं, तो थोड़ा फीलिंग में भी आई, संकल्प भी चला, थोड़ा रोने भी लगी। तो बाबा को धीरे धीरे पता चला, साकार बाबा को, तो बाबा भी अनायास, जानते तो सब कुछ है पर फिर भी कुछ सिखाने के ख्याल से भी जब नजदीक आए तो देखा कि मम्मा के आंखों में से आंसू आ रहे हैं। तो बाबा ने मम्मा को कहा, अरे मम्मा, माँ कभी रोती है क्या? अगर माँ रोएंगी तो बच्चों का क्या हाल होगा? माँ कभी भी रोती नहीं है, सदा हंसते रहना। मेरे कहने का मतलब कि ऐसी छोटी छोटी बातें भी जब बाबा कहते थे तो मम्मा क्यों मम्मा बन गई, क्योंकि बाबा की छोटे छोटी आज्ञा हो, इशारा हो, कोई सावधानी हो तो उसको ध्यान बेध्यान नहीं करती थी, पर उसको इतना इम्पोर्टेंस देती थी, इतना महत्व देती थी और इतना ध्यान रखती थी कि वही बात हम जब तक मम्मा के अंग संग बहुत सालों तक रहे, कभी मम्मा के जीवन में वो हमने रिपीट नहीं देखा। इसलिए मम्मा मम्मा बन गई छोटी छोटी बातों में। तो देखो, कहने का भाव ये है कि हम छोटी छोटी बात को थोड़ा निग्लेक्ट करते हैं, बेध्यान करते हैं, लेकिन हम क्या बनने जा रहे हैं, क्या बनने आए हैं, और जब हम उस देवी देवताओं की रहनी करनी और उस दुनिया की बातों को, उस दुनिया की रहन सहन को याद करते हैं कि कैसे वो सदा हर्षित मुख रहते हैं, कैसे वो सदा कम बोलते हैं, थोड़ा धीरे बोलते हैं, बहुत आवाज से नहीं बोलते हैं, जोर जोर से नहीं हंसते हैं। जोर जोर से हंसना, बाबा कहता था, ये भी शोभता नहीं है, हमारा दिव्य गुण नहीं है। हम भी जब लक्ष्य रखा है देवी देवता बनने का, तो देवी देवता ही जीवन की जो रहन सहन है, रहनी करनी, पर्सनालिटी है, वो बाबा छोटी छोटी बताए ना बातों में, रोने का, हंसने का, आवाज करना। जब मम्मा सभा में भी चलती थी, तो अभी भी हमारे बहुत भाई बहनों के आप सबके अनुभव तो होंगे, कोई ऐसे चलते हैं जो जोर जोर से पैरों का, चाहे चप्पल पहना हो, खड़ा हो, जो भी हो, उसका आवाज आता रहता है। लेकिन मम्मा के जीवन में देखा कि बाबा ने इशारा दिया तो चलती थी, तो ऐसे चलती थी जैसे कभी खड़ा हो तो क्या पांव के उसकी भी आवाज नहीं आती थी। ऐसी छोटी छोटी बातें, कैसे वो खाना पकाते हैं, कैसे भोजन करते हैं, कैसे योग युक्त रह करके भोजन बनाना, ये छोटी छोटी बातें बाबा बहुत सिखलाते थे। जिसको हम ये कहें कि बाबा ने ऐसा घड़ा, जो क्योंकि बाप को भी ये थोड़ा नाच तो रहता है, होता है कि कोई भी अगर कहे कि ये किसका बच्चा है, किसकी बच्ची है, तो कोई भी ऐसी उंगली न उठाए, कोई ये न कहे कि इसका बच्चा, इसकी बच्ची ऐसी है क्या, ऐसी होती है क्या। तो देखो, है तो छोटी बात, पर इसमें बाप का भी नाम खराब हो जाता है, कई बार कुल का भी नाम खराब होता है, कुटुंब का भी हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों को छोटा न मानकर उसको बहुत डीपली अपने लाइफ में धारण करने का एक पुरुषार्थ करना और उस पर इतना गहरा अटेंशन, मम्मा का तो हम बहुत देखते थे, प्रैक्टिकल में देखते थे, नहीं तो छोटी थी मम्मा से बड़ी बड़ी हमारी बहुत बड़ी दादियां भी थी, उम्र में भी बड़ी थी, कहीं शादीशुदा भी थी, कहीं कुमारियां भी थी, छोटे भी थे, लेकिन मम्मा इतने सारे सबके बीच में रहते हुए भी क्यों अव्वल नंबर में गई, क्यों आगे बढ़ गई, क्यों इतना अपने आप के ऊपर इतना अटेंशन दिया, अपने आप के ऊपर भी और ये छोटी छोटी बातों के ऊपर भी। हम लोगों को कई बार ख्याल नहीं होता है, हम बातचीत करते हैं, पड़ोस पड़ोस में लोग बैठे रहते हैं, कहाँ रास्ते चलते, तो वो भी जब जानते हैं कि ये लोग यहाँ रोज जाते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, तो वो बड़ी सूक्ष्मता से हम लोगों की चेकिंग भी करते हैं, हमारा ध्यान भी रखते हैं और कोई अच्छे वेल विशर होते हैं तो थोड़ा राय सलाह भी करते हैं, और जिनको जीवन में कुछ सीखना है उसकी तो सब सुनने की तैयारी होती भी है और होनी भी चाहिए। अगर हम सोचे मुझे कोई कुछ कहे ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं, तो हम फिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी देखो बहुत कुछ सिखलाते हैं, बड़े बुजुर्ग उनमें भी बहुत विशेषताएं होती है, यूं ही अनुभवी नहीं कहे जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हर छोटे बड़े बूढ़े युगल हो, कोई भी शहर के हो गांव के हो, कई बार कोई कहते ये तो गांव का है ना, या कहेंगे ये थोड़ा अनपढ़ है। तो जब हम दूसरों को कहते हैं और अपने को जब कोई कहता है तो जब बुरा लगता है तो वो बात बोलने में हमको भी बहुत अटेंशन देना पड़ता है। इतने सारे संगठन में देखो ब्रह्मा बाबा ने उसमें भी विशेष रूप से बहनों को माताओं को, कई बार कोई पूछते हैं ना बहने माताएं आप रहती हो आपकी कभी झगड़े नहीं होते हैं, और जब हम कहते हैं हमको पूछते थे आप इतनी बहने रहती हो तो आप सब अलग अलग अपना भोजन बनाती हो क्या, तो क्या हम कहते हैं अलग अलग भोजन बनाने का कोई सवाल पैदा होता है। कई बार कोई कोई ये अच्छा नहीं लगा, वो नहीं अच्छा लगा, कुछ खट्टा लगा, कुछ कड़वा लगा, कुछ कच्चा पच्चा होता तो है, संगठन में क्या नहीं हो सकता है। लेकिन इन बातों पर ध्यान न दे करके, और हम किस लक्ष्य से यहाँ आए हैं, क्या बनने आए हैं, कैसा मुझे बनना है, मुझे किसको फॉलो करना है, हरेक से कैसे गुणग्राही बनना, ये बाबा ने देखो हमको संस्कार मिलन के लिए बहुत अच्छी अच्छी विधियां दी है। हम तो कहते थे हम सब एक ही भंडारे से मिलजुल करके बना करके खाते हैं, कोई का अलग अलग नहीं है। हाँ आजकल समय अनुसार थोड़ा कोई बीमारियां हैं, कोई परहेज तो उस समय भी होती है। आप लोग ने तो बहुत स्टोरी सुनी है, कहानियां सुनी है कि कैसे यज्ञ में जब गरीबी का पार्ट आया तो बाबा ने सबको खाली ढोडा और छाछ भी पिलाई है। माना हर एक के जीवन में ऐसे थोड़ा चढ़ाव उतराव तो आता ही है, गरीबी साहूकारी का पढ़े अनपढ़ का अनुभव तो हर एक को आता ही है और आना भी चाहिए, और उसमें कैसे हम एक रस रहें और अपनी स्थिति के ऊपर ध्यान दें। क्यों मम्मा बताए ना, वो मम्मा अपनी अवस्था के ऊपर बहुत ध्यान देती थी और छोटी छोटी बातों के ऊपर भी इतना अपने आप को कंट्रोल में रखती थी जो कोई भी उंगली उठा के ऐसा कह न सके ये इनकी मम्मा ऐसी है। तो हमने तो शुरू से लेकर के जो भी हमारी पुरानी दादियां हैं, मैं तो करीबन सब दादियों के अंग संग रही हूं अलग अलग स्थानों पर, कभी भी तो आज दिन तक कभी कोई का आवाज या कोई हमको बोल रहा है डांट रहा है कभी ऐसी भाषा या शब्द भी नहीं सुने। परिवार में ये सब कुछ क्या है। तो कहने का भाव ये है कि इतना अच्छा हमारा ईश्वरी परिवार है, रूहानी परिवार है, दैवी परिवार है, और हम जब इतना अच्छा सतयुगी दैवी परिवार बनाने जा रहे हैं या उस परिवार के मेंबर ही हम बन रहे हैं या उसकी ही हम धारणाएं कर रहे हैं, तो हम जितना अपने आप के ऊपर अटेंशन देते हैं, क्योंकि कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी हम सब यहाँ अपने आप का परिवर्तन करने आए हैं, न कि औरों का परिवर्तन। बाबा ने सबको परिवर्तन करने का ठेका कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, हमने कर सकते हैं। आप चाहो परिवार में रहते हो, कभी अलग अलग स्वभाव संस्कार, हम चाहे हम इसको परिवर्तित कर दें, हमारी खाली कहने से नहीं होता है। वो जब खुद रियलाइज करके और अपने जीवन में खुद फील करे कि ये मेरे में नहीं होना चाहिए या मुझे नहीं करना है, हम खुद जब तक रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हम अपना परिवर्तन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात इस ईश्वरी विद्यालय की क्या है, संस्कार परिवर्तन। हम सबको मालूम है कि आत्मा अलग अलग है, हर आत्मा के मन बुद्धि संस्कार भी अलग अलग है, चाहे शरीर की आयु बड़ी छोटी कुछ भी हो, लेकिन सब आत्माओं के तो अनादि अविनाशी आदि जो संस्कार है, पूरे 5,000 वर्ष का जो रिकॉर्ड भरा हुआ है, वो हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। तो जब हम ड्रामा समझते हैं, खेल समझते हैं, एक्टर के रूप में देखते हैं, सबको पारिवारिक भावना से देखते हैं, तो हमें वही सब कुछ दिखाई पड़ता है। तो क्या करना है, बाबा ने जैसे कहा ना, मम्मा भी कहती थी, एक ने कही दूसरे ने मानी, उसको ज्ञानी कहते हैं। हम अपने आप को ज्ञानी कहलाते हैं, तो ज्ञानी माना समझदार। समझदार भी कैसे, इशारे में समझने वाले, कहलवाने वाले नहीं, बुलवाने वाले नहीं, लेकिन चाल चलन रहन सहन हर बातों से। हम तो देखते थे बड़ी दादियों का, उनके खान पान से, उनके चलन से बहुत कुछ हम सीखते आए आज दिन तक। बाबा मम्मा को तो खैर देखा, वो तो थे ही अव्वल नंबर, लेकिन और भी जो हमारी दादियां यज्ञ को इतने सालों तक जो संभाल रही, वो यूं ही नहीं यज्ञ को संभाल रही है, यूं ही नहीं चलता है। जब पूरा बाबा को फॉलो करके और उसको धारण करके जब हम चलते हैं ना, तो हमारी जीवन हमें भी एक ऐसा एग्जाम्पल बनानी है जो हमको देख करके और उनको भी जीवन में कुछ प्रेरणा मिले। कईयों को बाबा कहते हैं ना, कोई कोई कहते हैं हमको वाचा सेवा करना नहीं आता है, अथवा ज्ञान नहीं बोल सकते हैं, नहीं सुना सकते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, अपनी धारणा द्वारा सेवा करो, मनसा द्वारा सेवा करो, संकल्पों से अच्छे वाइब्रेशन दो, और वाचा में यूं ही बाबा कहते, हम तो मम्मा के जीवन में देखते थे कि अगर हाँ या ना बस इतने में जवाब अगर मिल जाता है, तो मम्मा कभी अपनी लाइफ में एक वाक्य भी बोलती नहीं थी, मना इतना बोल के ऊपर भी अटेंशन। कहने का भाव ये भी, हमारी एनर्जी वेस्ट न जावे, जैसे संकल्पों की भी एनर्जी है, दृष्टि वृत्ति की भी है, वाचा की भी है, कर्मणा सेवा में भी एग्जर्शन तो होता ही है ना, काम करते करते शरीर है, नया पुराना छोटा बड़ा थोड़ी थकावट का फील तो होता ही है ना। लेकिन जितना हम ज्ञान की हर बात को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में धारण करके चलते हैं ना, तो ये बातें कोई बड़ी नहीं लगती है। नहीं तो मैंने कहा ना, लोग पूछते थे आप एक ही भंडारे में सब खाते हो, एक ही भंडारे में सब बनता है। तो देखो बाबा ने हम सबको अगर सचमुच देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा ने इस यज्ञ की स्थापना के पीछे बहुत सारी देखो अपनी शक्तियां, गुण, तन मन धन, समय, शक्ति क्या नहीं लगाया है। कितने साल देखो आज हो गए हैं, और अभी तो हम बहुत आने वाली नई दुनिया के समीप पहुंच रहे हैं। तो कई बार कोई कहते हैं ना, कर लेंगे, हो जाएगा, शर्त ही है, अभी कहाँ कोई संपूर्ण बना है, अभी ये भी ऐसे है, ये भी ऐसी है, वो भी ऐसा है। उसी में ही अगर संगम युग का टाइम हमारा चला जाए तो उसको क्या कहेंगे। वैसे समय भी हमारा टीचर है, समय भी हमको बहुत कुछ सिखाता है। व्यक्ति तो सिखाते हैं, परिस्थितियां भी सिखाती है, वातावरण भी बहुत कुछ बताता है। लेकिन एक दो से भी हम बाबा कहते हैं ना कुछ ग्रहण करने का लक्ष्य रखेंगे। देवी देवताओं की राजधानी में है तो सब वहां भी वैरायटी ना, लेकिन हरे के स्वभाव, संस्कार, रहन सहन वो दिव्यता वाला बनाने का देखो बाबा ने हम सबके ऊपर बहुत मेहनत की है। हमको क्या करना है, खाली धन दे करके ऐसे नहीं हम बहुत कुछ उसका रिटर्न करें, परंतु मुख्य बात है अपनी जीवन को ही प्रैक्टिकल में उस स्वरूप वाला बना करके और बाप की मेहनत का हम रिटर्न करें तो बाबा ज्यादा खुश होता है। और बाबा दुआ भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। कोई भी बच्चा अगर बाप की दुकान को बहुत डीटो एक्यूरेट बाप समान संभाल लेता है तो सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी सब क्या बोलते हैं कि इसने पूरा बाप जैसा ही धंधा संभाल लिया है, ये डीटो बाप जैसा ही है, ये माँ जैसे है। तो कहने का भाव ये है कि जब हमको इतना बाबा समय दे रहा है और हम जब यहाँ आते हैं इतने संगठन के बीच, तो देखो बाबा अभी भी हमको सिखा रहे हैं कि संगठन में भी हम एकता किस धारणा के आधार से बना सकते हैं। और कुछ भी करते हैं, समझो कुछ धारण भी करते हैं, कुछ देते भी हैं, किसके लिए करते हैं? कोई को दिखाने के लिए कि अपने आप को अच्छा बनाने के लिए करते हैं? हम तो स्वयं यहाँ अपने आप को बनाने आए हैं ना, परिवर्तन करने आए हैं ना। और इतना अच्छा हजार हाथ वाले बाप का हमको साथ हो, संग हो, सहयोग हो, मदद हो, तो हम जो चाहे ना बनना वो हम जरूर बन सकते हैं। सिर्फ हमको इसमें दृढ़ता को धारण करना है। और विशेष बाबा ने जो मेहनत विशेष दी है वो कौन सी है, अमृत वेले का प्रातः समय का योग। हम बाबा मम्मा को देखते थे, मम्मा को तो बहुत रात को 1:30 बजे 2 बजे उठ जाती थी और बाबा की याद में बैठ जाती थी और इतना अपने आप को शक्तिशाली बनाती थी, अपनी चलन के ऊपर, अपनी धारणा के ऊपर भी इतना अटेंशन देती थी कि बाबा को कुछ कहने का मौका ही नहीं देती थी। तो समझदार तो उसी को कहते हैं ना जो सब बातें इशारे में समझ जाते हैं, इशारों को धारण करते हैं। देवी देवता किसको कहते हैं? जो इशारों पर चलते हैं, धारण करते हैं। आज हम मंदिर में जब जाते हैं, मूर्तियों को देखते हैं, तो वो मूर्ति के नैन चैन चेहरा, उसका वहाँ का वाइब्रेशन, वहाँ का वातावरण, देखो जड़ मूर्ति भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। तो अभी हम सब तो चैतन्य में संगठित रूप से जब चल रहे हैं, और सचमुच तो ब्रह्मा बाबा ने कितना देखो हम सबके ऊपर मेहनत की है। अभी जो भी समय हमारे पास है वो हम अपने आप को चेक करें, बाबा ने बताई हुई हर बात को हमने कितने हद तक फॉलो किया है, अभी कौन सी बात बाकी जीवन में रह जाती है। हम अभी ये कोई का कहें क्या अवगुण है, इसमें क्या खामी है, ये शोभता भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। कहेंगे इतने सालों से आ रहे हो, चल रहे हो, अभी तक यही बात है, तो अच्छा नहीं लगता है। छोटे बच्चे चाहे और भी देख के क्या सीखेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, क्या बनेंगे। तो हमको सिर्फ बनना नहीं है, परंतु क्या बनाना भी है। तो बना कब सकेंगे? जब हम स्वयं बने हुए होंगे। जैसे मम्मा का बताया ना, छोटी छोटी बातें बाबा कहते थे, जोर जोर से हंसना, रोना, या कभी आवाज से चिल्लाना, बोलना, ऐसी छोटी छोटी बातों पर भी इतना अटेंशन दे करके, और अपने आप को बाबा ने जो आशा रखी और बाबा ने जो यज्ञ माता बनाया और जिम्मेवारी सौंपी, कभी ये नहीं सोचा और ये भी देखा कभी ना, तो लाइफ में ही नहीं था। कहते थे ना कौन कहता है, हाँ नास्तिक होता है। तो हमको, हम नास्तिक नहीं यहाँ बनने आए हैं, हम है ही आस्तिक। और हमको हर बात में देखो आस्तिक बन करके, और बाबा की जो ये छोटी छोटी धारणाओं की बातें हैं, खान पान की, चलने फिरने की, देखो निंद्रा भी कैसे, बाबा कहते थे ना योग निंद्रा, 2 बजे उठ जाते थे, कभी इतनी गहरी नींद भी नहीं, और सात्विक, और जैसे कोई देवी देवता ऐसे ही बस विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं तो भी उनसे देखो वाइब्रेशन ऐसे मिलते हैं। तो अभी हम सबको थोड़ा जो ये समय बाबा ने दिया है पुरुषार्थ करने का, तो कहने का भाव ये है व्यक्तिगत पहले हम अपने आप के ऊपर बहुत 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 अटेंशन देकर के अगर ध्यान रखें, और ऐसी हमारी लाइफ एक एग्जाम्पल बनाए जो हमको देख करके दूसरों को भी वो जीवन जीने की, ऐसा करने की कुछ प्रेरणा मिले। तो क्या करना है सबको, यहाँ संगठन में आए हो तो बाबा ने देखो हम सबको सिखाया है कि कैसे संगठन में भी एक दो से गुण ग्रहण करना, एक दो की अच्छाई को ही देखना, चाहे वर्णन करना, यही इस संगम युग के पुरुषार्थ में हमें अपनी लाइफ में थोड़ा अंडरलाइन करना है। वैसे दुनिया में लोग ऐसा कहते हैं कि ये आत्मा का जो ये संस्कार है ना जन्मजात, वो मरने दम तक नहीं जाएगा, ये जाएगा तो भी साथ ले जाएगा, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन हम बड़े दावे के साथ कहते हैं कि ऐसे संस्कार जो हमारे योग्य नहीं है, लायक नहीं है, उसी को ही तो बाबा ने बदलने के लिए हमें दो तीन धारणाएं अच्छी बताई है, विशेष याद की, अभ्यास की, चाहे मौन में रहना, चाहे सात्विक भोजन, ये सब नियम भी क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि इन सब बातों का हमारे पर्सनल लाइफ में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो लोग कई बार पूछते हैं ना कि आप सब बहने इकट्ठी कैसे रहते हो, ये देखो बाबा की कमाल है। नहीं तो लोग मानते हैं कि बहने माताएं कभी इकट्ठी रहे, साथ रह सकती है, लोगों को आश्चर्य लगता है। लेकिन ये सचमुच मैं तो हमेशा याद करती हूँ, ब्रह्मा बाबा ने इतनी बहनों माताओं को संगठन में साथ रख करके, साथ चला करके और ऐसा लायक और योग्य बनाया। हम जितना भी बाबा का शुक्रिया अदा करें उतना कम है। कैसे हम शुक्रिया अदा करेंगे? हम ऐसा बन करके दिखाएं बाबा को, एग्जाम्पल बन करके दिखाएं, जो बाबा हमारा मिसाल कोई भी को दे सके। नहीं तो हम कभी कभी एक बहन भी साथ में रहती है, लौकिक में युगल होते हैं दो पति पत्नी, तो भी देखो आपस में क्या होता है, आप सब अनुभवी है। बाबा कभी कभी सभा में उठाते थे पति पत्नी को, उठो, जो कभी लड़ते झगड़ते नहीं हो वो हाथ उठाओ, जो कभी रोते नहीं हो वो हाथ उठाओ, जो कभी आपस में झगड़े नहीं करते हो वो हाथ उठाओ। बाबा तो सभा के बीच में, और कहता था जो कभी नहीं रोते हैं ना वो आकर के सभा में टोली बांटे, रोने वाले को नहीं। यानी कहने का भाव, छोटी छोटी बात को छोटी ना बांध करके, और अपने लाइफ में इसकी कितनी आवश्यकता है और ये हमारे लिए कितना जरूरी है। दृष्टि में देखो, वाचा में, चलन में बाबा ने हमको छोटी छोटी बातें बहुत सिखाई है। तो हम तो जब कभी याद करते हैं तो सचमुच बाबा मम्मा तो हमारे आगे एग्जाम्पल है ही है। हमारी दादियों ने भी देखो उनके कदम पर कदम मिला के और यज्ञ को इतना अच्छा संभाला है। आज दिन तक भी यज्ञ जो चल रहा है, लोगों को तो लगता है ना, वो बहुत हमारा ध्यान रख के और ही, बल्कि हमको, मैं तो कहूंगी जैसे समय हमको संपूर्ण बनाने में मदद करता है, ऐसे आपस में देवी परिवार की आत्माएं भी कुछ भी अगर कहती है वो भी हमको कदम कदम पर बहुत कुछ सिखा रहे हैं। हर एक से अगर हम कुछ न कुछ अच्छी बातें ग्रहण करते रहेंगे तो जिस रूप में बाबा हम सबको देखना चाहते हैं वो जरूर हम बन सकते हैं। और वो बनने का ही तो अभी ये थोड़ा सा, अभी तो देखो फिर भी हम देख रहे हैं, थोड़ा बैठे हुए हैं दो दिन संगठन में, पुरुषार्थ भी कर सकते हैं, कर रहे हैं हम। आप सबको मालूम है आगे चल करके कैसा समय आने वाला है, जो पुरुषार्थ की भी मार्जिन नहीं रहेगी, कुछ करने की भी मार्जिन नहीं रहेगी। और बाबा जैसे कहते हैं ना, जैसे ये कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब आवश्यकता है उस समय वो करना, ये हमारी शोभा है। उस समय मदद रूप बनेंगे ना तो बाबा उसका लाख गुना हमको सहयोग देते रहते हैं। तो अभी तो फिर भी हम थोड़ी बाबा से वो मदद का अनुभव कर रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन आगे चल करके जैसे बाबा कहता था वो समय आएगा, अनाज नहीं मिलेगा, खाने नहीं मिलेगा, वाहन नहीं मिलेगा, आपस में कहाँ संगठन भी नहीं होगा, अकेले भी रहने का मौका आवे, क्या क्या प्रकृति की भी देखो परिस्थितियां भी और आएंगी जोरदार। हमको बाबा ने सब एडवांस में सुना करके और हमको बाबा कितना तैयार कर रहे हैं, तो हमको उस बाबा की तो क्या कहे। जैसे हम बच्चों को भी बाबा मेहनत करना नहीं देख सकते हैं, ना बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे और मेहनत नहीं, मेहनत से मुक्त जैसे बाबा कहते हैं ना, तो बाबा भी अभी हम बच्चों को सहज पुरुषार्थी, सरल पुरुषार्थी, स्वाभाविक पुरुषार्थी, नेचुरल लाइफ, कोई मेहनत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, बाबा भी हमको उस स्वरूप में देखने चाहते हैं और वैसा बनाने चाहते हैं। तो कौन आज एक व्यक्ति के ऊपर कोई इतनी मेहनत करता है? आप अपने परिवार के बच्चे होते, युगल होते, दोनों एक दो के ऊपर मेहनत करते हैं दुनिया में अज्ञान में, कोई बच्चों के ऊपर, कोई के ऊपर कोई मेहनत करने की कोई को पड़ी नहीं है, फुर्सत भी नहीं है, और कहते मेरा क्या जाता है। लेकिन हम ये कहते हैं, हम ये सोचते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मेरा परिवार है, मेरे परिवार में ये शोभता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो अभी बहुत थोड़ा समय हम सबको मिला हुआ है, अपने आप को सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से जल्दी जल्दी संपन्न करके, भरपूर करके, और बाबा कहते हैं ना उसका दान करते चलो, दान करते चलो, तो आप जितना करेंगे दान उतना आपका भंडारा भरपूर होता जाएगा और काल कंटक सब दूर होता जाएगा। तो क्या बाबा ने मेहनत दी है, चलते फिरते उठते बैठते, एक तो बाप को याद करो, वो तो हम वैसे भी करते हैं ना कोई, बाप को याद करना तो और ही सहज है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे मेरे बाजू में आकर के यहाँ बाबा बैठता है, और जो बाबा बोलता है सबसे पहले मेरी आत्मा ये कान द्वारा सुनती है। और हम लोगों को क्या है, कोई दूर है हमसे, वहां दूर है, कितना समीप है। तो हमको भी ऐसे फील करना है, अनुभव करना है कि बाबा सदा मेरे साथी है, मददगार है, और उसका हम जितना एडवांटेज लें, बाबा का जितना यूज करें उतना। इस समय फिर भी बाबा थोड़ी मदद दे देते हैं, आगे चल करके तो बाबा कभी कभी कहते हैं ना, भक्तों की भी बहुत पुकार, लोगों की भी पुकार, और उस भीड़ा भीड़ में बाबा किसकी सुनेगा, अभी तो फिर भी हम सब की थोड़ा सुन रहा है। तो थोड़ा समय जो हमको पुरुषार्थ का मिला है, ये संगम के समय को हम व्यर्थ न गवाएं, न संकल्पों के द्वारा, न बहुत बोल करके, न ऐसे कार्य व्यवहार के द्वारा, और संगठन में भी जिस रूप से बाबा हम सबको देखना चाहते हैं, हम जितना वो बन करके दिखाएंगे तो बाबा भी हमको मेहनत से मुक्त कराने आए हैं, तो हमको भी बाप की उस आज्ञाओं का पालन करके, जब हम कहते हैं हम बाप समान बन रहे हैं, तो कैसी कैसी बातों में, किन किन बातों में कैसे बाप समान बनना, जो हमको समय प्रति समय मुरलियों में भी मिलता है, हमको बाबा ने दो चार बातें जो अटेंशन में खिंचवाई है, अमृत वेले का योग, रोज मुरली सुनना, चाहे सुनाना, चाहे करुणा सेवा के भी मार्क्स अपने जमा करना, क्योंकि सेवा भी करनी है, चारों सब्जेक्ट्स में मार्क्स लेने हैं, तो जितना हम अटेंशन देंगे उतना हम बाप के जल्दी जल्दी और समीप के सहयोगी बन करके मददगार बन के चल सकते हैं। ओम शांति।
Thank you.